जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत मदलीला अध्याय आठ। अध्याय का नाम है महाप्रभु तथा राय रामानंद राय के बीच वार्तालाप। प्यार संख्या 109 और 110 का तात्पर्य नहीं है, प्यार संख्या 111 का तात्पर्य है, उसे हम पढ़ेंगे साथ साथ। उसके पहले 109 110 में पढ़ के सुनाऊंगा। प्यार संख्या 109 है। सत कोटि गोपी संगे रास लीलास तार मध्य एक मूर्ति रहे राधा पाश। यद्यपि रास नृत्य के समय श्री कृष्ण लाखों गोपियों के बीच में थे, किंतु तो भी उन्होंने अपने आप को अनेकों में से एक दिव्य रूप में श्रीमती राधा रानी की बगल में रखा। इसमें अनुवाद में लिखा है लाखों गोपियां, लेकिन प्यार में है सत कोटि गोपी मध्य 100 करोड़ गोपी। अनुवाद में लाखों गोपियां लिखा है ताकि आप लोग समझ पाए, कुछ समझ में आए। 100 करोड़ सतकोटि गोपी मध्य सतकोटि गोपी संगे रास विलास। 100 करोड़ गोपियों के संग रास विलास। दिल्ली की कितनी जनसंख्या है? है? एक 1.5 करोड़ जनसंख्या है दिल्ली की। 100 करोड़ हैं गोपियां, 100 करोड़ गोपियां के बीच में रास विलास तार मध्य एक मूर्ति रहे राधा पास। उनमें से एक मूर्ति जो है राधा रानी के पास है, किसी की एक मूर्ति राधा रानी के पास है। फिर 110वीं प्यार है। साधारण प्रेम देखी सर्वत्र समता राधा रे कोटल प्रेमे हईल वामता। यद्यपि भगवान कृष्ण अपने सामान्य व्यवहार में सबके प्रति समभाव रखते हैं, किंतु श्रीमती राधा रानी के कुटिल प्रेम भाव के कारण विरोधी तत्व उपस्थित हो गए। क्या मतलब? साधारण प्रेम देखी सर्वत्र समता। तो कृष्ण के प्रेम में जो है सर्वत्र समता है। साधारण जितनी गोपियां हैं उनके साथ कृष्ण के प्रेम में समता। राधा रानी साधारण नहीं है, राधा रानी तो साधारण नहीं है, लेकिन जितनी साधारण गोपियां हैं उनके साथ कृष्ण का समान भाव है, समान भाव है ना। लेकिन राधा रे कुटिल प्रेम हईले वामता, राधा रानी का जो प्रेम है तो उसकी कुटिलता के कारण वामता पैदा हो गई, वामता पैदा हो गई है। वामता का मतलब है पक्षपात, पक्षपात पैदा हो गया है ना। अब मेरे पीछे बोलिए 111 श्लोक है। अहिर गति प्रेमणा स्वभाव कुटिला भवे अतो हेतो रहेतोश्च यूनोर्मान उदंचति। इसमें जो यूनो लिखा है तो या के साथ बिंदी लगी है, हाँ बिंदी लगी है, तो इसमें जो उच्चारण का जो नियम है वो ये, या में अगर बिंदी लगी है तो जा बोलना है, ठीक है, तो आप यूनोर की जगह बोलेंगे जूनोर, जूनोर, ठीक है। अहिरव गति प्रेमणा स्वभाव कुटिला भवे तो हेतु रहेतुश्च जूनोर्मान उदंचति अहिरव गति प्रेम्णा स्वभाव कुटिला भवे अतो हेतु रहेतुश्च यूनोर्मान उदंचति। शब्दार्थ में अहिर सांप की इव तरह गति ही चाल प्रेम्णा प्रेमाचार की स्वभाव स्वभाव से कुटिला कुटिल भवे होती है अतः अतः हेतु तो किसी कारण से हेतु तो कारण की अनुपस्थिति से च और जूनो हो युवा दंपत्ति का मान क्रोध उदंचति प्रकट हो जाता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, तरुण युवक तथा तरुण युवती के मध्य प्रेम की प्रगति सांप की गति जैसी होती है। इसके फलस्वरूप तरुण युगलों में दो प्रकार का क्रोध उत्पन्न होता है, एक तो हेतु सहित क्रोध और दूसरे हेतु रहित क्रोध। तात्पर्य पढ़ने से पहले समझेंगे, यहां पर जो यूनो बताया गया है युवा दंपति तरुण और तरुणी के बीच में क्रोध, तो ये सामान्य तरुण और तरुणी की बात नहीं हो रही है। कृष्ण जो तरुण है और राधा रानी तरुणी है, इनके बीच में बात हो रही है। प्रेम शब्द का जो प्रयोग है वो राधा और कृष्ण के बीच में ही हो सकता है। इस भौतिक जगत में जो युवक और युवतियों के बीच में प्रेम कहा जाता है वो प्रेम वास्तव में प्रेम नहीं है, काम है, प्रेम संभव नहीं है, है ना। यहां शब्दों का जो प्रयोग हुआ है वो है तरुण और तरुणी के बीच में, लेकिन आपको समझना अच्छी तरह से कि भौतिक संसार में जो भौतिक शरीर हैं स्त्री और पुरुषों के बीच में जो आकर्षण है वो प्रेम नहीं होता है, वो क्या होता है, काम होता है, काम वासना होती है, है ना। बहुत मतलब निकृष्ट है, प्रेम की तुलना बहुत निकृष्ट है। और ये जो प्रेम कृष्ण और राधा के बीच में है वो जो है प्रेम है। इस बात को सबसे पहले गांठ बांध के रखना है, है ना, तब आगे हम कुछ समझेंगे, और नहीं तो सब जो है बेकार हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। इतना प्रवचन सुना लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ, है ना। तो यहां पर जो है समझिए, श्लोक लिखा है श्वेत पट पर, अहेर एव गति ही प्रेम महा, प्रेम की जो गति है वो कैसी कैसी है, सांप की तरह है। सांप की गति कैसी होती है, जब सांप चलता है इधर चलता है एकदम से ऐसे हो जाता है, तो आप कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते कहां जा रहा है। आप तो चलते हैं तो ऐसे चलते हैं, फिर मुड़ना है तो ऐसे मुड़ेंगे ऐसे मुड़ेंगे, है ना, तो वो कुछ मतलब पता चलता है कि भाई कहां जा रहे हैं। कोई भी पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, उनकी जो गति होती है तो उससे पता चलता है कि भाई कहां जा रहे हैं, कोई दिशा होती है जिसमें आप जा रहे हैं। फिर सांप, सांप को कुछ पता नहीं चलता वो कहां जा रहा है, इधर 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 इधर, तो वो क्या है, बिल्कुल टेढ़ी चाल चल रहा है इधर और फिर चल रहा है इधर, तो क्या हो गया, कुछ पता ही नहीं कैसी है। इसको कहते कुटिला गति है, क्या है, अहेर गति प्रेमणा स्वभाव कुटिला हो गई, तो अहेरेव गति सांप की गति के समान प्रेम का जो स्वभाव, प्रेम स्वभाव से कुटिला, कुटिला शब्द भी जो है कुटिल का स्त्रीलिंग है, जिसे गति स्त्रीवाचक शब्द है, गति प्रेम की गति है ना, गति जो स्त्रीवाचक शब्द है ना गति, उसी प्रकार से कुटिला, कुटिल का स्त्रीवाचक शब्द हो गया कुटिला है ना। तो प्रेम की जो गति है वो स्वभाव से कुटिला है। कुटिला के भी मतलब क्या, टेढ़ा टेढ़ा, कुटिल कुटिला, तो बिल्कुल टेढ़ा है स्वभाव, प्रेम का स्वभाव भी जो है क्या है, टेढ़ा है। कहीं देवगति ही प्रेम ना स्वभाव कुटिला भवे। अतो अतो माने इसलिए, हेतो अहेतोश्चा, तो कभी कारण हो या ना कारण हो तो भी मान हो जाता है, मान उत्पन्न हो जाता है, मान उत्पन्न हो जाता है प्रेम में। यूनो, यूनो का मतलब है चाहे तरुणी में हो या तरुण में हो, मान उत्पन्न हो जाता है प्रेम में, मान उत्पन्न हो जाता है। और ये प्रेम है, प्रेम में मान उत्पन्न हो जाता है, और मान उत्पन्न हो जाता है तो प्रेम में बाधा पैदा होती है। मान उत्पन्न हो गया हाँ, नहीं अब बात नहीं करेंगे, छोड़ दिया, अलग हो गए, दूर हो गए, दूरी पैदा हो जाती है। मान से क्या होता है, प्रेम में दूरी पैदा हो जाती है, तो प्रेम में मान उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा लगता है बाहर से, तो ऐसा लगता है कि बाधा है, ये तो बड़ी बाधा हो गई, अब मिलन में बाधा हो गई, रस रसास्वादन में बाधा हो गई, अब संग में बाधा हो गई, तो दूरी पैदा हो गई मान। लेकिन वास्तव में ये प्रेम का एक रस, ये रस तो होता क्या है, तात्पर्य हम लिखे, तात्पर्य हम पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद, क्या लिखते हैं शिला प्रभुपाद की, रास नृत्य के समय प्रत्येक गोपियों के, प्रत्येक दो गोपियों के बीच कृष्ण का एक रूप था, किंतु श्रीमती राधारानी के बगल में केवल एक कृष्ण थे। तो राधारानी को तो भगवान विशेष सम्मान दे रहे हैं, रास नृत्य में दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण है, दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण है, तो मतलब इससे देखा जाए तो एक एक गोपी को आधे कृष्ण मिले कि नहीं। अगर दो गोपियों के बीच एक कृष्ण है तो एक एक गोपी को कृष्ण कितने मिले, आधे मिले। लेकिन राधारानी के साथ पूरे कृष्ण है, राधारानी के सबके बीच में कृष्ण है, राधारानी के साथ में तो पूरे कृष्ण है, तो राधारानी को तो विशेष सम्मान मिल रहा है ना। तो हाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, किंतु श्रीमती राधारानी के बगल में केवल एक कृष्ण है तो पूरे कृष्ण है, तो बहुत अंतर हो गया ना, राधारानी को विशेष सम्मान दे रहे हैं कृष्ण। इतना होने पर भी श्रीमती राधारानी कृष्ण से असहमति प्रकट कर रही है, नहीं गलत है ये मान, अब इसका कोई कारण नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है कि राधा रानी को तो कृष्ण विशेष सम्मान दे रहे हैं, अलग से कृष्ण है, हैं वो पूरे कृष्ण है, एक कृष्ण है, जबकि गोपियों के बीच में एक कृष्ण, दो दो गोपियों के बीच में तो आधे कृष्ण मिल रहे हैं, है ना, इतना है ना। तो इतना होने पर भी श्रीमती राधा रानी कृष्ण से असहमति प्रकट कर रहे हैं। ये श्लोक श्रील रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि श्रृंगार भेद कथन 102 से लिया गया है। ये राधा रानी का मान, राधा रानी क्या करती हैं, दूर हो जाती हैं, रास नृत्य छोड़ देती हैं, उनको सहन नहीं होता मान, तो मान हो गया, ये अभिमान नहीं है, ये घमंड नहीं है, ये मान जो है प्रेम में होता है, राधा रानी का कृष्ण के प्रति प्रेम है इसलिए मान होता है। राधा रानी कृष्ण के ऊपर अपना अधिकार समझते हैं, पूरा अधिकार, अपना अधिकार दिखाते हैं, क्योंकि तो प्रेम का जो है कुछ अलग ही हिसाब होता है, ये भौतिक संसार का हिसाब नहीं है। इस भौतिक संसार में जब होता है ना, तो घमंड होता है, जो काम वासना होती है उसमें फिर घमंड पैदा होता है, उसमें ईर्ष्या पैदा होती है, कामात क्रोधो भी जायते, तो उसको क्रोध कहा जाता है। कामात क्रोधो भी जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। भौतिक संसार में भी जो स्त्री पुरुष होते हैं प्रेम व्यवहार, उसको बोलते हैं प्रेम व्यवहार। प्रेम व्यवहार हो गया, वास्तव में प्रेम व्यवहार नहीं था, वो काम व्यवहार था, काम वासना का विवाह था, उसको बोलते हैं प्रेम विवाह, लव मैरिज। और फिर उसमें जब मान पैदा होता है तो मान नहीं है, क्रोध, कामात क्रोधो भी जाएगा, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध, तो वो लव मैरिज नहीं है, वो क्या है, काम विवाह है। और काम के बाद क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध, और क्रोध से तलाक, तलाक ना, तलाक, तलाक जैसे चांटा मारा, तलाक जैसे तलाक ना, तो शास्त्र में तलाक शब्द ही नहीं आता, हमारे शास्त्र में तलाक शब्द ही नहीं आता, क्योंकि विवाह जो है, विवाह की विधि ये है ही नहीं है कि एक दूसरे से जो है किसी कारण से, आकर्षण के कारण जो है विवाह करते हैं, तो विधि नहीं, ना विवाह की इस तरह की विधि है, ना ऐसे प्रेम विवाह कि विधि है शास्त्र में, न तलाक की कोई विधि। तो ये जो है मतलब बहुत ही संसार का दृश्य है, यहां आध्यात्मिक जगत का जो दृश्य है वो अलग है, यहां प्रेम है और प्रेम में मान होता है, प्रेम में क्रोध नहीं होता है, प्रेम में क्या होता है, मान होता है, अभिमान नहीं है, घमंड नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब चीजें नहीं है, यहां पर मद मत्सर ये सब चीजें नहीं है, मान, मान ये क्रोध में, ये जो है प्रेम में मान जो होता है, तो ये सांप की तरह ये जो है गति है, प्रेम की जो गति है वो सर्प की तरह है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किस समय मान पैदा हो जाए, और ये देखने में लगता है कि ये बाधा उत्पन्न कर रहा है, प्रेम में बड़ी बाधा उत्पन्न होता है ना, तो जब भी रास नृत्य हो रहा है, राधा रानी रास नृत्य को छोड़ करके चली जाती है, ये बंद कर दिए पंखा, ठंडी हवा है। तो ये जो है मतलब स्थिति है राधा रानी का मान है ना। तो हम सुनेंगे कुछ ब्रह्म विवर्त पुराण से कुछ ऐसी घटनाएं सुना। तो सुनिए बड़े ध्यान से, ब्रह्म विवर्त पुराण में क्या होता है। पूर्व काल में, ये गोलोक धाम की बात है, पूर्व काल में गंगा जी गोलोक में विराजमान थी, बाद में गंगा जी को गोलोक धाम छोड़ना पड़ा, राधा रानी के मान के कारण गंगा जी को गोलोक धाम छोड़ना पड़ा, लेकिन गंगा जी गोलोक में विराजमान थी, राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई, ये अलग ही एक लीला है कि गंगा जी कैसे प्रकट हुई राधा कृष्ण के शरीर से। ये गंगा जो है देवी के रूप में अत्यंत सुंदर रूप धारण करके पधारी, उस समय उनके रूप लावण्य की कहीं तुलना नहीं है, शरीर नूतन लवण से संपन्न है, सभी अंग रत्नों के आभूषणों से अलंकृत है, और कमल की भांति मुस्कान भरा मुख मनोहर है, और आभा तपाही हुए सोने के समान है, तेज में शरद काल के चंद्रमा को भी परास्त कर रही है, कौन, गंगा जी, मनोहर से मनोहर उनकी कांति है, शुद्ध सात्विक स्वरूप धारण किया हुआ है, विशाल दो नेत्र अनुपम शोभा बढ़ा रहे हैं, और कटाक्ष पूर्ण दृश्य से देख रही हैं, सुंदर अलकावली शोभा बढ़ा रही है, और मालती के पुष्पों का मनोहर हार धारण किए हैं, ललाट पर चंदन बिंदुओं के साथ सिंदूर की सुंदर बेंदी है, और अधर और उष्ट इतने सुंदर हैं दोपहरिया के विकसित फूल हों, दांतों की उज्ज्वल पंक्ति पके हुए अनार के दानों के समान है। अग्नि शुद्ध दो दिव्य वस्त्रों को धारण किया हुआ है। ऐसी गंगा जी लज्जा का भाव प्रदर्शित करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई। अंचल से अपना मुंह ढककर निर्निमेश नेत्रों से भगवान के मुख का अमृत निरंतर प्रसन्नता पूर्वक पी रही हैं। निर्निमेश नेत्रों से, गंगा जी के नेत्र जो है निर्निमेश है, निर्निमेश का मतलब बिना निमेश के, यानी पल के बंद नहीं हो रही है। निर्निमेश नेत्रों से श्री कृष्ण के मुख रूपी अमृत का निरंतर पान कर रही है, निरंतर पी रही है। अगर आंखें बंद हो जाती हैं तो फिर वो पीने बाधा पड़ती है, तो आंखों से पी रही है ना, तो निर्निमेश नेत्रों से कृष्ण के मुख का सौंदर्य पी रहे हैं। मुख मंडल प्रसन्नता से खिला हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के रूप ने उन्हें बेसुध और अत्यंत पुलकायमान कर दिया है। इतने में भगवती राधिका वहां विराजमान हुई, राधा रानी विराजमान हुई। उस समय राधा के साथ असंख्य गोपियां हैं। राधा की कांति ऐसी है मानो करोड़ों चंद्रमाओं चंद्रमा एक साथ प्रकट हुए हों। उस समय वे क्रोध की लीला करना चाहती हैं, उसी को कहते हैं मान, क्रोध की लीला उसी कहते हैं मान। तो ये क्रोध नहीं है जो रजोगुण से पैदा होता है, रजोगुण समद्भवा काम एष क्रोध एष रजोगुण समद्भवा, वहां पर ये सब रजोगुण नहीं है, प्रकृति के तीन गुण नहीं है ना। तो क्रोध की लीला करना चाहते हैं तो मान, और ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए राधा रानी मान करते हैं, तो क्रोध की लीला करना चाहती थी। अतः उनकी आंखें लाल कमल की तुलना करने लगी, तो वो भी सुंदर है। राधा रानी के नेत्र भी लाल हो गए तो भी सुंदर है, लाल कमल के समान। उनका वर्ण पीले चंपक की तुलना कर रहा था और चाल ऐसी थी मानो मत वाला गजराज हो। अमूल्य रत्नों से बने आभूषण उनके श्री विग्रह की शोभा बढ़ा रहे हैं। शरीर पर दो दिव्य पीतांबर शोभा पा रहे हैं। श्री कृष्ण के अर्घ्य से सुशोभित चरण कमलों को उन्होंने हृदय में धारण कर रखा है। श्री कृष्ण के चरण कमलों को हृदय में धारण कर रखा है किसने? राधा रानी ने अपने हृदय में श्री कृष्ण के चरण कमलों को धारण कर रखा है। सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए विमान से उतरकर वे पधारी। उनका अलग विमान है, अपने विमान से उतरी और पधारी। ऋषिगण उनकी सेवा में लगे हुए हैं। स्वच्छ चमर डुलाया जा रहा है। कस्तूरी की बिंदु से युक्त चंदनों से समन्वित बिंदु रूप में शोभायमान सिंदूर उनके ललाट के बीच में शोभा पा रहा है। पारिजात के पुष्पों की सुंदर माला गले में सुशोभित है। रोष के कारण उनके सुंदर ओष्ठ फड़क रहे हैं। रोष, श्री कृष्ण के पास जाकर गए सुंदर रत्नों के सिंहासन पर विराजमान हो गई। उनको पधारे देकर भगवान श्री कृष्ण उठ गए। भगवान कृष्ण उठ गए, उनका कितना सम्मान है राधा रानी का। भगवान कृष्ण उठ गए और कुछ हंसकर आश्चर्य प्रकट करते हुए मधुर वचनों में उनसे बातचीत करने लगे। उस समय गोपों के भय की सीमा न रही, सब गोप भयभीत हैं। कृष्ण के साथ जितने गोप हैं वो भयभीत हैं। नम्रता के कारण कंधे झुकाकर उन्होंने भगवती राधिका को प्रणाम किया और वे उनकी स्तुति करने लगे। पर ब्रह्म श्री कृष्ण भी राधिका की स्तुति की। गंगा भी तुरंत उठ गई और उन्होंने राधा का स्तवन किया। उनके हृदय में भय छा गया। अत्यंत विनय प्रकट करते उन्होंने राधा से कुशल पूछी। किसने पूछी? गंगा जी ने पूछी। वे डर कर नीचे खड़े हो गए। कृष्ण के साथ बैठी देने डर करके नीचे खड़े हो गए। उन्होंने ध्यान के द्वारा मन ही मन श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ली। अभय चरण, जहां भय हो तो गंगा जी ने ध्यान के द्वारा ही मन ही मन कृष्ण के चरणों की शरण ली। गंगा के हृदय स्थित कमल के आसन पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण ने उस समय डरी हुई गंगा को आश्वासन दिया। गंगा के हृदय में एक कमल है, कमल में कृष्ण विराजमान है और वे गंगा जी को आश्वासन दे रहे हैं। क्या? नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं। गंगा जी को आश्वासन दे रहे हैं भगवान कृष्ण, डरने की कोई बात नहीं। इस प्रकार सर्वेश्वर श्री कृष्ण से वर पाकर देवी गंगा स्थिर चित्त हुई। उनका डर दूर हो गया, वरदान मिल गया। सर्वेश्वर कृष्ण से वरदान मिल गया गंगा जी को, किस चीज का? अभय अभय का वरदान। स्थिर चित हो गई गंगा जी। अब गंगा ने देखा देवी राधिका ऊंचे सिंहासन पर बैठी हैं, रूप परम मनोहर है, देखने में बहुत सुखप्रद है, ब्रह्म तेज से उनका स्त्री विग्रह प्रकाशमान हो रहा है। किसका? राधा रानी। सनातनी देवी सृष्टि के आदि में असंख्य ब्रह्माओं को रचती हैं, उनकी अवस्था सदा 12 वर्ष की रहती है। सदा कितनी अवस्था है? 12 वर्ष की। अभिनव यौवन से उनका विग्रह परम शोभा पाता है, अखिल विश्व में उनके समान रूपवती और गुणवती कोई भी नहीं है, ना उनके समान कोई रूप है और ना उनके समान किसी का गुण। वे परम शांत कमनी अनंत परम साध्वी आदि अंत रहित हैं, उन्हें शोभा सुभद्रा और शुभका ये सब नाम दिए गए हैं। अपने स्वामी के सौभाग्य से सदा संपन्न रहती हैं, संपूर्ण स्त्रियों में वे श्रेष्ठ हैं और परम सौंदर्य से सुशोभित हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी इस ग्रंथ में एक घटना यह भी है कि राधा रानी ने गोलोक धाम में 1 करोड़ वर्ष तक जो है तप किया, और जब भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए तो उन्होंने वर मांगा राधा रानी ने, और क्या वर मांगा? कि मुझे सौत का कष्ट ना मिले, मुझे सौत का कष्ट ना मिले। राधा रानी ने वर मांगा तो सौत का कष्ट नहीं। तो इसका मतलब यह है कि राधा रानी के अनुगत जो उनकी सखियां हैं सेविकाएं हैं, तो राधा रानी उनको कृष्ण से मिलाती रहती हैं, और वो जो है राधा रानी की प्रसन्नता से उनको कृष्ण से हमेशा मिलन प्राप्त होता है। लेकिन जो राधा रानी से स्वतंत्र होकर के कृष्ण के साथ संबंध बनाती हैं तो उनको भय प्राप्त होता है। यहां पर जो है जो भी राधा रानी से स्वतंत्र होकर के कृष्ण के साथ संबंध बनाती हैं उनको भय प्राप्त होता है, क्योंकि उनको वरदान प्राप्त हुआ है। क्या? कृष्ण की अर्धांगिनी है, श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को साथ लेकर उन महालक्ष्मी की उपासना की है। महालक्ष्मी कौन है? राधा रानी। लक्ष्मी के साथ विष्णु भी ने भी उपासना की है। किसकी? राधा रानी की। महालक्ष्मी श्री कृष्ण की उज्ज्वल सभा को अपने कांति से सदा प्रकाशित करते हैं। सखियों का दिया हुआ दुर्लभ पान उनके मुख में शोभा पा रहा है, स्वयं अजन्मा होती हुई अखिल जगत की जननी है। इनकी कीर्ति और प्रतिष्ठा विश्व में सर्वत्र फैली हुई है। किसकी? राधा रानी की कीर्ति प्रतिष्ठा सर्वत्र फैली है। भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की साक्षात देवी हैं। उन परम सुंदरी देवी को भगवान प्राणों से भी प्रिय मानते। तो ये नारायण ऋषि सुना रहे हैं ये कथा। नारायण सी जो नर नारायण है गंधमादन पर्वत में तपस्या करते हैं, अखंड ब्रह्मचारी, ये कथा जो है इतनी पवित्र है कि नर नारायण सी जो अखंड ब्रह्मचारी का पालन करते हैं गंधमादन पर्वत में, उनको सुना। और किसको सुना रहे हैं? नारद जी को, जो अखंड ब्रह्मचारी है। नारद जी भी अखंड ब्रह्मचारी है ना, ये कथा बहुत पवित्र है। तो नारद नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, राजेश्वरी श्री राधा की इस अनुपम झांकी को देखकर गंगा जी का मन तृप्त ना हुआ। कितना सौंदर्य है ना, गंगा जी तृप्त नहीं हो रही, निर्निवेश नेत्रों से निरंतर राधा सौंदर्य का अमृत पीती रही। अभी कृष्ण के सौंदर्य का अमृत पी रही थी, अब राधा रानी के सौंदर्य का अमृत, वो भी निर्निवेश नेत्रों से। कौन पी रही है? निर्निमेश नेत्र मतलब बिल्कुल खुली आंखें हैं, अलग नहीं झपकी। हे मुनि, इतने में राधा ने मधुर वाणी में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण से कहा। अब राधा रानी कैसे बोल रही? मधुर वाणी बोल रही है, हालांकि क्रोध की लीला प्रकट कर रहे हैं उसमें भी खूब मधुर है। प्रत्येक लीला मधुर है क्योंकि ये सब लीला है ना, क्रोध नहीं है वहां पर, काम क्रोध नहीं है, क्रोध की लीला है तो वो भी बहुत मधुर होती है ना। मधुर वाणी में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण से कहा, और समय श्री राधा का विग्रह परम शांत था। गुस्से में क्या होता है? एकदम वोट फड़कते हैं, क्या क्या होता है, परम शांत, परम शांत नम्रता आ गई, मुख पर मुस्कान छाई। क्रोध की लीला करनी है ये मुस्कुराहट के साथ, मुख में मुस्कुराहट है और जो है शरीर बिल्कुल शांत है, नम्रता है, इस प्रकार का क्रोध है ना। श्री राधा ने कहा, प्राणेश आपके प्रसन्न मुख कमल को मुस्कुराकर देखने वाली ये कल्याणी कौन है? किसी से पूछ रही हैं, क्या पूछ रही हैं? ये कल्याणी कौन है जो आपके प्रसन्न मुख कमल को मुस्कुराकर देख रही है, इसके तिरछे नेत्र आपको देख रहे हैं, इसके भीतर मिलन इच्छा का भाव जागृत है, आपके मनोहर रूप ने इसे अचेत कर दिया है, इसके सर्वांग पुलकित हो रहे हैं, वस्त्र से मुख ढककर बार बार आपको देखना इसका स्वभाव बन गया है, आप भी इसकी ओर देख करके मधुर मधुर हंस रहे हैं, आप अनेक बार ऐसा करते हैं और कोमल स्वभाव की स्त्री होने के कारण प्रेम बस मैं क्षमा कर देती हूं, मेरा स्वभाव कोमल है, कोमल स्वभाव की स्त्री होने के कारण मैं प्रेम बस आपको क्षमा कर देती हूं, जबकि क्षमा करने लायक आपका यह व्यवहार नहीं है। राधा रानी कह रही है प्रेम के कारण मैं क्षमा कर देती, मेरा स्वभाव कोमल है स्त्री है? आपने गिरजा देवी से प्रेम किया, फिर वो अपना शरीर त्याग कर महान नदी के रूप में परिणत हो गई, तो गिरजा से आपने प्रेम किया, तो भयभीत होकर के गिरजा ने क्या किया, अपना शरीर छोड़ा और नदी बन गई। आपकी वो देवी नदी रूप में अभी विराजमान है, गिरजा नदी जो है बहती है गोलोक धाम में, आपके औरस पुत्र रूप में उससे समय के अनुसार सात समुद्र उत्पन्न हुए, जो सात समुद्र पृथ्वी पर हैं, तो ये गिरजा से उत्पन्न हुए भगवान कृष्ण के द्वारा। प्राणनाथ आपने शोभा से प्रेम किया, वो भी शरीर त्याग कर चंद्रमंडल में चली गई, तब उसका शरीर परम स्निग्ध तेज बन गया। अब सुनिए बड़े ध्यान से, ये बड़ी दिव्य लीला है, शोभा से प्रेम किया, एक फिर राधा रानी के भय से शोभा ने शरीर त्यागा, तो चंद्रमंडल में जो शोभा है चंद्रमंडल वो कहां से आई है, उससे आई है, और फिर उसका भी जो है उस तेज के आप आपने टुकड़े टुकड़े करके वितरण कर दिए, वो तेज जो शोभा का चंद्रमंडल में आया उसके आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो कहां पर आया है वो सब शोभा, रत्नों में, रत्नों में शोभा होती ना, वो कहां से आई है, उसी की है शोभा, गोपी की रत्नों में दिखाई देती है शोभा, सुवर्ण में शोभा दिखाई देती है, दिखाई देती है, और मणि में शोभा दिखाई देती है, स्त्रियों के मुख कमल में शोभा दिखाई देती है, और राजा के शरीर में शोभा दिखाई पड़ती है, फूलों की कलियों में शोभा दिखाई पड़ती है, कहां से आई है, गोलोक धाम की लीला से, पके हुए फलों में आती है शोभा, चमकते हैं ना पके हुए फलों में, लहलहाती खेतियां उनमें भी शोभा दिखाई पड़ती है, कहां से आई है, ये सब जो है ये बहुत साइंटिफिक बातें हैं, ये वैज्ञानिक लोग जो है अपने खोज से नहीं निकाल सकते कैसे आई है। राजाओं के सजे धजे महल में शोभा होती है, तो कहां से आई है, उसी से आई है, और नए बर्तन में शोभा होती है, होती है नया नया बर्तन में शोभा होती है, वो कहां से आई है, उसी से आई है, और दूध में, दूध में भी सुंदरता है, है? कहां से आई है, उसी से, गोलोक धाम से, ये सब आपके द्वारा उस शोभा के कुछ कुछ भाग पा गए हैं, आपने ही बांटा है, उसके शरीर का जो है जो तेज है वो आपने बांट करके चंद्रमा को दिया, और फिर उसके और टुकड़े करके कहां कहां दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ग्यारह स्थानों में बांट दिए आपने, भगवान ने बांटा, भगवान ने दिया शोभा। मैंने आपको प्रभा के साथ प्रेम कर देखा, और जब मैंने देखा तो उसने भी शरीर छोड़ दिया, तो क्या किया, वो भी शरीर त्याग कर सूर्य मंडल में प्रवेश कर गई प्रभा है, उस समय उसका शरीर अत्यंत तेजोमय बन गया। उस तेजोमय प्रभाव को आपने विभाजन करके जगह जगह बांटा। अब सूर्य में जो तेज है वो कहां से आया? वो प्रभा का है। चंद्रमा में जो तेज है वो शोभा का है, गोरखधाम की एक गोपी है, और सूर्य में जो तेज है वो प्रभा का है। उस तेजोमय प्रभाव को आपने जगह जगह बांटा, उसके भी टुकड़े किए। अब देखिए कैसे टुकड़े किए, अग्नि में आई, आपने अग्नि को दिया कुछ हिस्सा प्रभा का, दूसरा यक्ष, यक्ष में होता है कुछ तेज, और नरेश राजा, राजा में भी है, देवता देवताओं में होता है, और वैष्णव में भी तेज होता है, वैष्णव में भी तेज होता है वो भी, और नाग, नागों में भी तेज है, ब्राह्मण में तेज है, मुनि में तेज है, तपस्वी में तेज है, सौभाग्यवती स्त्री में तेज है, यशस्वी पुरुष में तेज होता है। ये थोड़ा थोड़ा जो रूप है, ये थोड़ा थोड़ा हिस्सा है, वो कहां से आया है? प्रभा से। एक बार मैंने आपको शांति नामक गोपी के साथ राजमंडल में प्रेम करते देखा, वो शांति भी अपने शरीर को छोड़कर आप में लीन हो गई। उस समय उसका शरीर परिणत हो गया, उत्तम गुण के रूप में परिणत हो गया, आपने विभाजित करके विश्व में बांटा। शांति मिलती है तो कहां से आ रही है शांति? गोरखधाम से। पूरे विश्व में शांति बांट दी आपने, उसका कुछ अंश मुझ में भी आया, उसका कुछ अंश मुझ में भी आया, राधा रानी के मुझ में भी आया है, और कुछ निकुंज में आया है, और कुछ ब्राह्मणों में आया है। ब्राह्मणों में शांति होती है, कहां से आई? उधर से आई है शांति। फिर आपने उसका कुछ भाग लक्ष्मी जी को दिया है, कुछ अपने मंत्र के उपासकों को दिया, तो उनको भी शांति मिलती है। आपके मंत्र के जो उपासक होते हैं, हरे कृष्ण मंत्र के उपासक, उनको भी तो शांति मिलती है ना, तो वहां से आ रही है शांति। कुछ वैष्णवों को दिया तो वैष्णवों को भी मिलती है शांति, कुछ तपस्वियों को दिया और कुछ धर्म को दिया है, तो धर्म से शांति मिलती है, और धर्मात्मा पुरुषों को भी दिया तो शांति मिली इस प्रकार से। फिर क्षमा के साथ मैंने देखा कि आप प्रेम कर रहे हैं क्षमा नाम की गोपी। उस समय क्षमा अपना शरीर त्याग कर पृथ्वी पर चली गई, तब उसका शरीर उत्तम गुण में परिणत हो गया। उसके शरीर को आपने विभाजन किया तो कुछ अंश दिया आपने विष्णु जी को। किसको दिया? विष्णु जी को। क्या? क्षमा, क्षमा। शरीर त्याग करके पृथ्वी चली गई तो आपने उसका कुछ अंश विष्णु जी को दिया, कुछ वैष्णवों को दिया तो वैष्णवों में क्षमा होती है, धार्मिक पुरुषों को दिया उनमें भी क्षमा दिखाई देती है, फिर धर्म को दिया, धर्म देवता उनमें क्षमा, दुर्बलों को दिया दुर्बलों में क्षमा होती है, दुर्बल शक्ति नहीं ठीक है चलने दो तो क्षमा, तपस्वियों को दिया क्षमा होती है, देवताओं को दिया और पंडितों को दे दिया तो पंडितों में भी क्षमा होती है। हे प्रभु, इतनी सब बातें हैं तो मैं सुना चुकी, आप कैसे ऐसे बहुत से गुण हैं, आप सदा ही उच्च सुंदरी देवियों से प्रेम किया करते हैं। सब गुणगान, गुणगान है, है? इस प्रकार रक्त कमल के समान नेत्र वाली राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहकर साध्वी गंगा से कुछ कहना चाहा। गंगा योग में परम प्रवीण थी, तो कुछ कहना चाहते हैं गंगा जी, समझ गए क्या कहना चाहते हैं। योग में परम प्रवीण थी, योग के प्रभाव से राधा का मनोभाव उन्हें ज्ञात हो गया, पहले से पता चल गया कि इनका क्या मनोभाव है ना। अतः 20 सभा में ही अंतर्धान होकर भी अपने जल में प्रविष्ट हो गई। तब सिद्ध योगिनी राधा ने योग के द्वारा इस रहस्य को जान लिया और सर्वत्र विद्यमान उन जल स्वरूप ने गंगा को अंजलि में उठाकर पीना आरंभ कर दिया, अंजलि में ले लिया पूरा का पूरा जल राधा रानी ने, और पीना आरंभ कर दिया, पीना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में राधा का अभिप्राय पूर्ण योग सिद्धा गंगा से छिपा नहीं रहा, पूर्ण योग सिद्धा वो है गंगा जी। अतः वे भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाकर उनके चरण कमलों में लीन हो गए। राधा रानी की अंजलि में वो जल गायब हो गया, वो पी रही थी वो नहीं पी पाई। अंजलि के जल कहां चले गए? कृष्ण के चरण के अंगूठे में, हाँ, चरण कमल में लीन हो गए। तब राधा ने देखा गंगा कहां है, अपनी योग दृष्टि से देखा कहां है, गोलोक में नहीं, कहीं नहीं, कहां चली गई, गोलोक में नहीं है, बैकुंठ लोक में अपनी योग दृष्टि देखा, बैकुंठ लोक में चली गई, नहीं वहां भी नहीं, ब्रह्मलोक में वहां भी नहीं, संपूर्ण स्थानों में गंगा को खोजा। शरीर से कहीं नहीं जा रहे हैं राधा रानी, अपनी दृष्टि से खोज रहे हैं, परंतु कहीं भी वो दिखाई नहीं दी। उस समय सर्वत्र जल का नितांत अभाव हो गया, अब कहीं पानी नहीं रहा, कीचड़ तक सूख गया, कीचड़ तक सूख गया, जलचर जंतुओं के मृत शरीर से ब्रह्मांड का कोई भाग खाली नहीं रहा। जलचर जंतुओं के भी शरीर बिल्कुल मृत हो गए। जलचर जंतुओं के शरीर में तो पानी ही पानी होता है, फिर तो ब्रह्मा विष्णु शंकर अनंत धर्म इंद्र चंद्रमा सूर्य मुनिगण मुनि समाज नहीं मुनिगण नहीं मनुगण मनुगण और मुनि समाज देवता सिद्ध और तपस्वी सभी गोलोक में आए। बड़ा संकट आ गया। उस समय उनके कंठ ओठ और तालुक सूख गए थे सबके। किनके? ब्रह्मा विष्णु शंकर अनंत धर्म इंद्र चंद्रमा सूर्य मनु और मुनि देवता सिद्ध तपस्वी सबके गले सूख गए, ओठ सूख गए, तालु सूख गए। प्रकृति से परे सर्वेश भगवान श्री कृष्ण को सबने प्रणाम किया, क्योंकि ये श्री कृष्ण सबके परम पूज्य हैं। वर देना इनका सर्वोत्तम स्वभाव, वर देना इन सर्वोत्तम प्रभु का स्वाभाविक गुण है, इन्हें वर का प्रवर्तक ही माना जाता है। ये परम प्रभु संपूर्ण गोप और गोपियों के समाज में प्रमुख हैं, भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, ये सत्य स्वरूप है, सत्य साक्षी रूप सनातन पुरुष है, इनसे बढ़कर जगत में दूसरा कोई शासक नहीं है। अतएव इन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म आदि समस्त देवताओं ने प्रणाम करके स्तवन आरंभ कर दिया। भक्ति के कारण उनके कंधे झुक गए थे, उनकी वाणी गदगद हो गई थी, आंखों में आंसू भर आए, उनके सभी अंगों में पुलकावली छाई थी, सबने उन परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इन सर्वेश प्रभु का विग्रह ज्योतिर्मय है, संपूर्ण कारणों को भी के भी ये कारण है। ये उस समय अमूल्य रत्नों से निर्मित दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे, गोपाल इनकी सेवा में लगे हुए श्वेत चमर डुला रहे थे। गोपियों के नृत्य को देखकर प्रसन्नता के कारण इनका मुख कमल मुस्कान से भरा था। प्राणों से विदित प्रिय श्री राधा इनके वक्षस्थल पर शोभा पा रही थी। राधा रानी कहां पर है? कृष्ण के वक्षस्थल पर। उनके दिए हुए सुवासित पान ये चबा रहे थे। ऐसे ये देवाधिदेव परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण रास मंडल में विराजमान थे। वहीं मुनियों मनुष्यों सिद्धों तपस्वियों ने तप के प्रभाव से इनके दिव्य दर्शन प्राप्त किए। दिव्य दर्शन से सबके मन में अपार हर्ष हुआ, साथ ही आश्चर्य की सीमा भी ना रही। सभी परस्पर एक दूसरे को देखने लगे कि क्या दर्शन। तत्पश्चात उन समस्त सज्जनों ने अपना अभिप्राय जगत प्रभु ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि आप बात करें। ब्रह्मा जी बात करेंगे तो सबने ब्रह्मा जी से बताया। ब्रह्मा जी उनकी प्रार्थना सुनकर विष्णु को दाहिने और महादेव को बाएं करके श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तीन, ब्रह्मा जी ने अपने दाएं तरफ किसको किया? विष्णु जी को, बाएं तरफ शिव जी को। तब श्री कृष्ण के निकट पहुंचे। उस समय परम आनंद स्वरूप श्री कृष्ण और परम आनंद स्वरूप ने श्री राधा साथ विराजमान थी। उसी समय ब्रह्मा ने रास मंडल को केवल श्री कृष्ण में देखा। सबकी वेशभूषा एक समान थी, सभी एक जैसे आसनों पर बैठे थे। कितने कृष्ण हैं वहां। द्विभुज श्री कृष्ण के रूप में परिणत सभी ने हाथों में मुरली ले रखी। वनमाला सबकी छवि बढ़ा रही है। सबके मुकुट में मोर के पंख थे। कौस्तुभ मणि से वे सभी परम सुशोभित थे। गुण भूषण रूप तेज अवस्था से संपन्न उन सबका अत्यंत कमनीय विग्रह परम शांत था। सभी परिपूर्णतम थे। सब में सभी शक्तियां थीं, उन्हें देखकर कौन सेवक है और कौन सेव्य, इस बात का निर्णय करने में ब्रह्मा सफल नहीं हो सके कि कौन, सभी तो कृष्ण है। क्षण भर में ही भगवान श्री कृष्ण तेजस रूप हो जाते थे, तुरंत आसन पर बैठे हुए भी दिखाई पड़ने लगते, एक क्षण में उनके दो रूप निराकार और साकार ब्रह्मा को दृष्टिगोचर हुए। फिर एक ही क्षण में ब्रह्मा जी ने देखा भगवान श्री कृष्ण अकेले हैं, उसके बाद तुरंत ही झट उन्हें राधा और कृष्ण प्रत्येक आसन पर बैठे दिखाई पड़े। फिर क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा का रूप धारण कर लिया और राधा ने श्री कृष्ण का रूप धारण कर लिया। कौन स्त्री के वेश में है और कौन पुरुष के वेश में, ब्रह्मा जी इस रहस्य को समझ नहीं सके। तब ब्रह्मा जी ने अपने हृदय रूपी कमल पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया, ध्यान के नेत्रों से भगवान दिखाई पड़े। अतः अनेक प्रकार से परिहार करते हुए भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। तब भगवान की आज्ञा से उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली, फिर देखा तो श्री राधा को वक्षस्थल पर बैठाए हुए भगवान श्री कृष्ण आसन पर अकेले ही विराजमान है। इन्हें पार्षदों ने घेर रखा है, झुंड की झुंड गोपियां इनकी शोभा बढ़ा रही हैं। फिर ब्रह्मा आदि देवताओं ने परम प्रभु भगवान का दर्शन करके प्रणाम किया और स्तुति की। तब जो सबकी आत्मा और सब कुछ जानने में कुशल हैं, सबके शासक हैं और सर्व भावन हैं, उन परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं का अभिप्राय समझकर उनसे कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, आपकी कुशल हो, यहाँ आइए, मैं समझ गया आप सभी महानुभाव गंगा को ले जाने के लिए यहाँ पधारे हैं, परंतु इस समय गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी है। कारण वो मेरे पास बैठी थी, भगवान बता रहे हैं पूरी कहानी। कहानी क्या है कि वो मेरे पास बैठी थी, राधा जी से देखकर पी जाने के लिए तैयार हो गई, तो मेरे चरणों में आकर ठहर गई। मैं आप लोगों को उसे सहर्ष दे दूंगा, परंतु पहले आप उसको निर्भय बनाने का पूर्ण प्रयत्न करिए। तो मैं दे दूंगा, तो मेरे शरण में है तो मैं आपको गंगा दूं, इन कैसे दूंगा, जब पूरा निश्चय हो जाए कि आप निर्भय बनाओ तो मैं दूंगा, और राधा रानी क्या करेंगी, पी जाएंगी। तो भगवान क्या कह रहे हैं, खतरा है, मैं आपको दूंगा लेकिन जब खतरा पूरा टल जाए तब मैं दूंगा, गंगा जी के लिए खतरा है। तो हे नारद, भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी का मुख मुस्कान से भर गया। फिर तो वे संपूर्ण देवता जो सबकी आराध्या और भगवान श्री कृष्ण से भी पूजिता है, उन भगवती राधा की स्तुति करने में लग गए। सब लोग स्तुति कर रहे हैं भक्ति के कारण। अत्यंत विनीत होकर ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से राधा जी की स्तुति की। चारों वेदों के प्रणेता चार मुख वाले ब्रह्मा ने भगवती राधा का इस प्रकार स्तवन किया। हे देवी, ये गंगा आपके और भगवान श्री कृष्ण के अंग से समुत्पन्न है। आप दोनों महानुभाव रास मंडल में पधारे थे, शंकर के संगीत ने आपको मुग्ध कर दिया, उसी अवसर पर ये द्रव रूप में प्रकट हुई। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कौन प्रकट हुई द्रव रूप में, नहीं सुन रहे गंगा जी, सुन रहे ना सब लोग, उसी अवसर पर ये द्रव रूप में प्रकट हुई। अतः आप श्री कृष्ण अंग से उत्पन्न होने के कारण ये आपकी प्रिय पुत्री के समान शोभा पाने वाली गंगा आपके मंत्रों का अभ्यास करके उपासना करे, इसके द्वारा आपकी आराधन होनी चाहिए। फलस्वरूप वैकुंठ हरिपति चतुर्भुज भगवान श्री हरि इसके पति हो जाएंगे, साथ ही अपने एक कला से ये भूमंडल पर भी पधारेंगी और वहां भगवान के अंश क्षार समुद्र को इसका पति बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। क्षार समुद्र जिसको हम देखते हैं ना, हे माता, कौन कह रहे हैं माता, ब्रह्मा जी किससे कह रहे हैं, राधा रानी से कह रहे हैं, गंगा जी से नहीं कह रहे हैं, गंगा जी की रक्षा के लिए। हे माता, ये गंगा जैसे गोलोक में है वैसे इसे सर्वत्र रहना चाहिए, अगर आपकी अनुमति हो तो। आप देवेश्वरी इसकी माता हैं और ये सदा के लिए आपकी पुत्री हैं। हे नारद, ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती राधा हंस पड़ी, उन्होंने ब्रह्मा जी की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। तब गंगा श्री कृष्ण के चरण के अंगूठे के नख के अग्र भाग से निकलकर वहीं विराजमान हो गई। सब लोगों ने उनका सम्मान किया। फिर जल स्वरूप गंगा से देवी जल से निकलकर परम शांत विग्रह से शोभा पाने लगी। ब्रह्मानी जी ने गंगा के उस जल को अपने कमंडल में रख लिया, शंकर जी ने उस जल को अपने मस्तक पर रखा और ब्रह्मा जी ने गंगा जी को राधा मंत्र की दीक्षा दी सुरक्षा के लिए। ब्रह्मा जी ने गंगा जी को राधा मंत्र की दीक्षा दी, राधा के स्तोत्र, कवच, पूजा और ध्यान की विधि बतलाई, जिससे क्या होगा, गंगा जी की रक्षा होगी। ये सभी अनुष्ठान सामवेद में बताए गए हैं। गंगा जी ने इन नियमों के द्वारा राधा की पूजा करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। अब कोई खतरा नहीं है ना। तो इस तरह से कुछ बातें मैंने सुनाई, तो ये सब मान की लीलाएं, भगवान जो है जो लीलाएं करते हैं, तो राधा रानी जो है जो मान करती हैं, तो ये भौतिक संसार में ये सब चीजें नहीं होती हैं, है ना, ये आध्यात्मिक जगत पर। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है? हाँ जी बोलिए।
धन्यवाद प्रभु जी, बड़ा सुंदर अपने प्रश्न सुनाए। प्रभु जी से यहाँ पे हम देखते हैं कि सब गोपियां राधारानी के अनुगत से ही सेवा करनी चाहिए कृष्ण का। तो जैसे चंद्रावली इत्यादि गोपियां, उनका युद्ध भी है, तो ये क्या हमेशा भयभीत अवस्था में रहते हैं?
चंद्रावली जो है राधा रानी के ही समान है, उनका जो तेज है, प्रभाव है, राधा रानी के ही समान है। हालांकि राधा रानी के समान कोई नहीं है, लेकिन तो भी लीला के लिए ये जो है चंद्रावली को राधा रानी के समान माना गया है। तो ये भी एक लीला है जिसमें कि राधा रानी से उनको भय है भी नहीं भी है, क्योंकि हमेशा दूरी रहती है, तो हमेशा दूरी रहती है, तो इस तरह से भय नहीं है। अगर दूरी नहीं होगी तो फिर भय होगा, तो हमेशा दूरी रहती है। हाँ जी माता जी। हाँ, उनको सौत का कष्ट नहीं मिलता, सौत का कष्ट नहीं मिलता, मतलब उनके सामने कोई स्वतंत्र होकर के किसी से संबंध बनाए तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, इस तरह का नहीं है राधा रानी के साथ में। और जब रुक्मिणी सद्भावना सब आई तो सबका तेज जो है फिर बिल्कुल मतलब फीका पड़ गया। राधा रानी का ही तेज सबसे वो अलग लीला है, ठीक है।
प्रभु जी मेरा और एक प्रश्न था प्रभु जी कि मेरा प्रश्न है कि जो राधा कृष्ण पूर्ण रूप से चिन्मय है, सब प्रारंभ किए थे कि प्रारंभ जब कर रहे थे कि राधा कृष्ण प्रेम जो है बहुत ही उन्नत है, साधारण जैसे स्त्री पुरुष का प्रेम जैसे तो है नहीं, तो चिन्मय है पूरा राधा कृष्ण प्रेम भी चिन्मय है, दोनों भी चिन्मय है। फिर मेरा प्रश्न यह है तो क्या कृष्ण जैसे हमारे जैसे पुरुष है चिन्मय, हमारे जैसे पुरुष होंगे और राधा रानी स्त्री जैसे ही होगी?
हाँ, ये आदि पुरुष हैं, गोविंदम आदि पुरुषम, और जो राधा रानी आदि प्रकृति हैं, तो उन्हीं की प्रतिकृति में ये मनुष्य का शरीर बना, स्त्री का शरीर बना। तो ये सब जो है जो पुरुष भाव भगवान कृष्ण में है, स्त्री भाव राधा रानी में है, ये वो शुद्ध रूप है, ये सब शुद्ध रूप है। और ये सब विकृत रूप जो है ये भौतिक संसार में दिखाई पड़ता है, वो सब विकृत रूप है, ठीक है ना। तो शुद्ध रूप में जो है हर चीज भगवान में है। हाँ, आपका प्रश्न।
हरे कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बता रहे थे जैसे आपके ब्रह्मा जी के चार मुखों से चार वेद निकलते हैं, ये भागवत में भी पढ़ते हैं कि पहले केवल एक ही वेद था यजुर्वेद, तो शिल व्यास देव जी ने उनकी चार शाखाएं बनाई, तो इसको किस प्रकार समझ सकते हैं?
हाँ, इसको जो है विचार करना पड़ेगा। ये चार वेद जो है कलयुग में चार वेद होते हैं, नहीं तो तीन वेद होते हैं, तो कलयुग में चार वेद होते हैं, इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि वेद जो है वेद मंत्र जो है भगवान की श्वास से निकले हैं, और ये जब कलयुग में चार वेद होते हैं तो ये इनकी सत्ता तो हमेशा रहती है, सत्ता वो जो है एक कभी एक रूप धारण कर लें, कभी तीन रूप धारण कर लें, कभी चार रूप धारण कर लें, तो ये भी जो है इनकी एक दिव्यता है कि वेद ही जो भगवान का संदेश है, कभी एक रूप धारण करते, कभी तीन रूप, कभी चार रूप धारण करते हैं, तो ये भी जो है उनकी लीला समझ सकते हैं या इसी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।
धन्यवाद।
ग्रंथराशि चैतन्य भक्तामृत की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री राधिका रमण की जय। जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र की जय। गौर निताई कृष्ण बलराम की जय।